सुबह सुबह शिवी किसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट के आगे थी। दरवाज़ा ना खोलने पर वो वहीं दरवाजे का सहारा लेकर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो शिवी एक झटके के साथ पीछे की तरफ गिरी। उसके गिरते ही दरवाज़ा खोलने वाला शख्स जोर से हंस पड़ा। शिवी मुंह बनाते हुए उठी। तुमने जानबूझकर किया ना ये? उसने उसकी तरफ घूर कर देखा। हाँ तो, कहकर वो फिर हंस पड़ा। सामने मौजूद लड़का शिवी से उम्र में बड़ा था। वो देखने में बिल्कुल गोरा चिट्टा, नीली आँखें और सुनहरे बालों वाला लड़का था, जिसके बाल कानों से हल्के लंबे थे। कल रात को तुम कहाँ थीं? तुम्हें उससे मतलब? हम एक दूसरे से जितना दूर रहें हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा नील, कहकर शिवी अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसका इस तरह दो टूक जवाब देना नील को पसंद नहीं आया। वो तेज़ी से उसके पीछे गया और उसकी बाजू पकड़कर घुमाकर अपनी तरफ किया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे बदतमीजी से बात मत किया करो, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, शिवी ने हाथ छटक कर नील को खुद से दूर किया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी हेल बना दूंगा, अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे आगे तुम्हें इतने दर्द मिलेंगे कि उसके आगे ये सब कुछ नहीं है, नील ने क्रूरता से जवाब दिया। उसके चेहरे पर हंसी के भाव थे। इन योर ड्रीम्स, जब मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँगी तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। अच्छा, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? तुम्हारी वजह से मुझे इस छोटी सी जगह पर रहना पड़ रहा है। मेरी अच्छी खासी हैप्पी लाइफ में तुमने जो कड़वाहट भरी है उसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी लिटिल सिस्टर। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे डैड ने तुम्हें सज़ा देने के लिए तुम्हें अपने बंगले से निकालकर यहाँ लाकर पटक दिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? शिवी ने कहा। कर सकती हो नहीं, ये सब तुम्हारी माँ और तुम्हारी वजह से हुआ है। पैसों के लिए तुम्हारी माँ ने मेरे डैड से शादी कर ली और मुझे यहाँ तुम्हारा बेबी सिटर बना दिया। अब बेबी सिटिंग का काम मिला है तो अच्छे से करूँगा ना। कल पूरी रात तुम कहाँ थी? जवाब दो। नील शिवी से काफ़ी गुस्से में बात कर रहा था। वो शिवी के बिल्कुल पास था और उसने गुस्से में उसकी कलाई कसकर पकड़ रखी थी। और मैं ये तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती, शिवी ने अपने दूसरे हाथ से उसे पिंच करके अपना हाथ छुड़ाया। दर्द से नील के मुंह से आह निकल गई। तुम और तुम्हारा बाप मेरे पापा बनने की कोशिश मत करो, अपनी बात कहकर शिवी कमरे में जाने लगी। तभी नील ने पीछे से आवाज़ लगाकर कहा, हम तुम्हारे पापा बन भी नहीं सकते सिस्टर, वी आर सिविलियंस नॉट क्रिमिनल। हमें उनके जैसा बनने के लिए किसी की जान लेनी पड़ेगी। जानती हो ना तुम वो कहाँ है और तुम कौन हो? एक खूनी की बेटी। इस बार शिवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। अपनी इस जीत पर नील काफ़ी खुश था। अंदर आते ही शिवी की आंखों में आंसू आ गए। वो नील के सामने काफ़ी स्ट्रांग होने का दिखावा करती थी, लेकिन उसे उसकी कमज़ोर कड़ी का अच्छे से पता था। जब भी वो उसे हरा नहीं पाता था तब उसके पापा का नाम लेकर उसे हर्ट करता था। मेरे पापा मर्डरर नहीं है, उन्हें बस फंसाया गया था। अगर मेरी माँ मुझे यहाँ नहीं लेकर आती तो मैं ये बात साबित कर सकती थी, शिवी ने खुद से कहा और अपने आंसू पोंछे। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ लगे कैलेंडर पर गई, जिसमें महीने की आखिरी दो तारीख को छोड़कर सभी तारीख पर क्रॉस का निशान लगा था। बस दो दिन और, दो दिन के बाद मुझे मेरी एमबीए की डिग्री मिल जाएगी और मैं वापस इंडिया चली जाऊंगी। अच्छी डिग्री होने की वजह से जॉब तो मिल ही जानी है, वहाँ रहकर मैं अपने पापा को बेगुनाह प्रूफ करूंगी। सिर्फ दो दिन और, फिर इस मनहूस जगह पर कभी कदम भी नहीं रखूंगी। शिवी ने तुरंत ही खुद को संभाला और अलमारी खोलकर अपनी पैकिंग करने लगी। वो पैकिंग कर रही थी तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल स्क्रीन में अपनी माँ का फ़ोन आता देख शिवी ने बड़बड़ाकर कहा, अब इन्हें भी संभालो, ज़रूर नील ने इन्हें सब कुछ बता दिया होगा। उसने अपनी माँ का कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से शिवी की माँ नंदिनी की आवाज़ आई, ये मैं क्या सुन रही हूँ शिवी, तुम कल रात फिर से घर से बाहर थीं। मैं जानती हूँ अब हम इंडिया में नहीं रहते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पूरी रात भर से गायब रहो और अय्याशियाँ करती रहो। अब कुछ आगे बोलोगी भी या नहीं? आप मुझे बोलने का मौका देंगी तब तो मैं कुछ बोलूंगी ना, शिवी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले नंदिनी बीच में फिर से बोल पड़ी। हाँ, अब यही बाकी रह गया था, बाकी लोगों से तो बदतमीजियाँ करती ही थी, अब तो मुझसे भी उसी लहजे में बात करने लगी। आपको मेरी बात सुननी ही नहीं थी तो आपने मुझे कॉल क्यों किया था? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था, तुम्हारी वजह से नील को उस छोटे से घर में रहना पड़ रहा है, वो पूरी रात तुम्हारी वजह से सो नहीं पाया। अपना ये एटीट्यूड छोड़ो और उसके साथ अच्छे से रहो ताकि तुम्हारे डैड उसे माफ़ करके वापस घर बुला सकें। वो मेरे डैड नहीं है, शिवी गुस्से में उन पर चिल्लाई। दूसरी बात ये कि मेरी वजह से नील को घर से नहीं निकाला गया था, उसने खुद अपने पापा से बदतमीजी से बात की थी। झगड़ा भी तो तुम्हारी वजह से ही हुआ था। देखो बेटा, अब हमारा इनके अलावा और कोई नहीं है, बेहतर होगा कि तुम इन सबको एक्सेप्ट कर लो। इस बार नंदिनी की आवाज़ में थोड़ी नरमी थी, वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी। शिवी ने भी आगे ज्यादा बहस करना जरूरी नहीं समझा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ माँ, मुझे इस वक्त काम है, कहकर शिवी ने कॉल कट कर दिया। उनका फ़ोन काटने के बाद वो वहाँ लगे बेड पर बैठकर सोचने लगी। एक्सेप्ट माई फुट, बस जैसे तैसे करके ये दो दिन बीत जाए, फिर कभी ज़िंदगी में तुम सब लोगों की शक्ल भी नहीं देखूंगी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ, कहाँ गया आपका वो प्यार जो मेरे पापा के लिए था? इस चकाचौंध में सब कुछ खोकर रह गया है, लेकिन शिवी सबसे अलग है, उसके लिए पैसों से ज़्यादा प्यार मायने रखता है। मैं अपने पापा को बेगुनाह साबित करके रहूंगी, फिर हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत साथ में करेंगे। आने वाली नई और अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोचकर शिवी के चेहरे पर चमक थी। थोड़ी देर पहले हुई अपनी माँ के साथ बहस को भुलाकर वो उसी उत्साह के साथ वापस पैकिंग करने लगी। मिस्टर आशुतोष सिंह ओब्रॉय का कैरन से शादी करने की न्यूज सुनने के बाद ओब्रॉय मेंशन में हड़कंप समझ गया। न्यूज अनाउंस करने के कुछ देर बाद ही इवेंट मैनेजमेंट टीम उनके घर पर थी, जो शाम को होने वाली पार्टी की तैयारियां कर रही थी। इन सब के बीच मायरा नीचे आते टाइम शौर्य से टकरा गई। नीचे हुई बहस की वजह से शौर्य परेशान था, तो वहीं मायरा भी कहीं ना कहीं इन सब की वजह से उदास थी। शौर्य का अथाह हुआ चेहरा देखकर मायरा बोली, तुम्हें इन सब के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए था। डैड के काफी सारे अफेयर्स थे, ऐसे में वो कब तक क्रिस्टी आंटी के साथ रहते। वैसे मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, झूठा दिलासा मत दो, मैं अच्छे से जानता हूँ अंदर ही अंदर तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है, शौर्य ने जवाब दिया। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन खुशी मिल नहीं रही। खैर छोड़ो, आगे क्या सोचा है तुमने, डिवोर्स के बाद? तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मॉम यहाँ कभी नहीं रहेगी और उनके बिना मैं भी नहीं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो प्रॉपर्टी के लालच में अपने मॉम का साथ छोड़ दूँ, शौर्य ने टोंट मारा। मुझे यहाँ छोड़ने का डिसीजन मेरी मॉम का था, और मैं क्यों अपना हक छोड़ूं? मेरी मॉम बीमार थी, वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके पास चली जाती तो आज अकेले कहीं गरीबी में सड़ रही होती, वो मरने वाली थी। शायद यही वजह थी कि डैड ने उन्हें छोड़ दिया, मायरा ने बुझी आवाज में कहा। यह इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता, शौर्य गुस्से में बोला। मैं इस डिवोर्स को कभी नहीं होने दूंगा, इस आदमी को इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि किसी और से शादी कर सके, कहकर शौर्य वहां से जाने लगा।
उसकी बात सुनकर मायरा चौंक गई, वो जल्दी से दौड़कर उसके सामने गई। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जल्दी बताओ प्लान क्या है। पर मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। देखो, एक से भले दो, इस वक्त अपनी ईगो को साइड में रखो, प्लान में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो सारा मामला बिगड़ सकता है, मायरा ने उसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, शौर्य ने कुछ देर सोचने के बाद हामी भरी। आज शाम की पार्टी ओबेरॉय मेंशन में यादगार रहेगी, उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट थी। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, शौर्य मायरा के साथ वहां से निकल गया। वहीं आर्य और विक्रम सिंह ओबेरॉय नीचे की तरफ आ रहे थे। उन्होंने मायरा और शौर्य को पीछे से साथ जाते देखा तो उन दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ये दोनों साथ में, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, विक्रम जी ने आर्या की तरफ देखकर कहा। कह सकते हैं, वैसे भी इस चिड़ियाघर में सब कुछ अनएक्सपेक्टिंग ही होता है, आर्या ने जवाब दिया। हाँ, सही कहा, सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे उस लड़की को देखकर हो रही है जो अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ शादी करने जा रही है। तुम्हारे बाप का भी दिमाग खराब हो गया है, इस उम्र में अपने बेटे की शादी के बारे में सोचना चाहिए, और कहाँ खुद घूड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा ना, मुझे इस घर में सिर्फ आपसे मतलब है, बाकी कोई कुछ भी करे मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, चलिए अब मैं चलता हूँ, कहकर आर्या वहां से जाने लगा। विक्रम सिंह जी ने उसे पीछे से आवाज लगाकर कहा, आज रात की पार्टी में आ रहे हो ना? आर्या उनकी तरफ मुड़कर बोला, नहीं दादू, मैंने एक नया रेस्टोरेंट खरीदा है, आज रात बस उसी की इनॉग्रेशन पार्टी में जाना है, मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ चलें। हाँ, चल सकता था, मुझे इस घर में हो रही पार्टी और आशु की शादी से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं नहीं चाहता इन सब के चक्कर में बच्चे सफर करें, उनकी तो कोई गलती नहीं है, विक्रम सिंह ने गंभीर आवाज में कहा। आप जिन्हें बच्चे समझ रहे हैं वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं हैं, आपने थोड़ी देर पहले उन दोनों को साथ देखा ना, इसका मतलब शाम को पार्टी में जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है, तो समझ लो उस गड़बड़ को रोकने वाला भी कोई चाहिए होगा। ज्यादा देर ना सही, लेकिन पार्टी में कुछ देर के लिए आ जाना, ताकि आपके ओबेरॉय खानदान की इज्जत बनी रहे, आर्या ने उनकी बात बीच में काटकर कहा। विक्रम सिंह जी ने उसकी बात पर हामी भरी। आर्या ने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से ऑफिस जाने लगा। आज शाम का इंतजार तो मुझे भी है, मिस्टर ओबेरॉय की नई शादी को लेकर नहीं, बल्कि उस लड़की शिवी के चेहरे पर हार देखने के लिए मैं बेकरार हो रहा हूँ। रात के बारे में सोचकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक जीत की मुस्कुराहट। रीडर्स, कहानी पढ़कर समीक्षा भी कर दीजिएगा, आपकी एक छोटी सी समीक्षा हम राइटर्स को बहुत सपोर्ट करती हैं, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालकर इतना सा कर दीजिएगा।